हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। कार की पिछली सीट पर बैठी सुनैना, जिसे वो ड्राइवर समझ रही थी, ने पीछे मुड़कर देखा। सुनैना को उसका चेहरा साफ दिखाई दिया और वो हैरान हो गई, अपनी जगह पर जम सी गई। इतनी देर से उसकी कार चला रहा शख्स उसे उसके पुराने बंगले के बजाय कहीं और ले आया था। वो कोई और नहीं बल्कि विराज था, विराज सहगल। वो शैतानियत से मुस्कुरा रहा था, उसके चेहरे पर एक कुटिल भाव था। सुनैना समझ गई कि उसके इरादे अच्छे नहीं हैं। अगर अच्छे होते तो वो उसे धोखे से यहाँ नहीं लाता। उसे मुस्कुराते देख सुनैना ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, विराज, तुम यहाँ मेरी कार में क्या कर रहे हो? कैसे आए? मेरा ड्राइवर कहाँ है? क्या किया तुमने उसके साथ? और क्या करने वाले हो तुम अभी? विराज ने आराम से उसकी तरफ देखकर कहा, अरे बस करो, इतने सारे सवाल एक साथ, क्या लगता है तुम मेरे साथ कोई क्विज खेल रही हो? रिलैक्स बेबी, हैव पेशेंस। विराज ने उसे बेबी कहकर बुलाया। सुनैना को घिन आई और वो चिल्लाई, शट अप विराज, जस्ट शट अप। जो भी करने वाले हो मैं तुम्हें पहले ही वार्निंग दे रही हूँ, ऐसा मत करो, नहीं तो तुम बाद में बहुत पछताओगे। विराज ने बुरा फील करने का नाटक करते हुए कहा, बाद में क्या, मैं तो अभी पछता रहा हूँ सुनैना। तुम्हें छोड़कर कैसे मैंने तुम्हें उस आदमी के लिए छोड़ दिया और तुम्हें भुलाने के बारे में सोचा? वो सब मेरी बहुत बड़ी गलती थी, लेकिन अब मैं वो गलतियाँ नहीं करूँगा। अब तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। विराज के पागलपन भरी बातें सुनकर सुनैना को समझ आ गया कि उससे बात करने का कोई फायदा नहीं है, वो अलग ही जोन में था। सुनैना साइड के दरवाजे की तरफ आ गई और हैंडल को अंदर की ओर घुमाकर दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कार का दरवाजा ऑटोमैटिक लॉक था, जिसे विराज ने पहले ही लॉक कर रखा था। कार के शीशे भी बंद थे। सुनैना को वहां से निकलने के लिए हाथ पैर मारते देख विराज ने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद बोला, रहने दो बेबी, थक जाओगी, और मैं हूं ना, मुझसे बोलो, मैं ओपन कर दूंगा। वैसे भी हमेशा तुम्हें यहाँ कार में बंद करके रखने का इरादा नहीं है मेरा, तुम तो मेरे साथ रहोगी, मेरे घर में। विराज की बातें सुनकर सुनैना गुस्से में अपने दांत पीटते हुए बोली, स्टॉप कॉलिंग मी बेबी, ये तुम्हारा घर नहीं है विराज। बताओ कहाँ ले आए हो तुम मुझे? तुम्हारा घर मैं जानती हूँ, और तुम क्यों कर रहे हो ये सब? प्लीज जाने दो मुझे। विराज साइको की तरह उसकी तरफ देखकर इमोशनल होते हुए बोला, तुम्हें कैसे जाने दे सकता हूँ भला? आई रियली लव यू, मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ सुनैना। तुमने मुझे रिजेक्ट करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, तुम्हें पता है उसके बाद मैंने क्या क्या झेला। मैंने खुद को ये समझने लगा था कि मैं किसी भी लड़की के लायक नहीं हूँ, इसीलिए तुमने मुझे मना कर दिया, लेकिन जो मेरा है मैं उसे हासिल करके रहूँगा, और तुम मेरी हो सुनैना। सुनैना ने अपने सिर पर हाथ रखकर चिल्लाया, स्टॉप इट विराज, तुम पागल हो चुके हो, दिमाग खराब है तुम्हारा, और तुम्हें इलाज की जरूरत है। मैं तुम्हारी नहीं हूँ, ना कभी हो सकती हूँ, क्योंकि मैं एक शादीशुदा लड़की हूँ, मेरी शादी हो चुकी है, और तुम ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि मेरा हस्बैंड। विराज गुस्से में चिल्लाया, कौन सा हस्बैंड? कहाँ है तुम्हारा हस्बैंड? मुझे अच्छी तरह याद है, तुमने कहा था कि तुम्हारी उससे जबरदस्ती शादी कराई गई है, तुम वो शादी नहीं करना चाहती थी, तो फिर क्यों तुम बार बार उस शादी को बीच में लेकर आती हो? और तुम्हारा वो हस्बैंड, वो तो शायद अब तक जिंदा भी नहीं होगा। सुनैना ने उसे गुस्से में उंगली दिखाते हुए कहा, डोंट यू डेयर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आदित्य के बारे में ऐसा कुछ भी बोलने की? जिंदा तो तुम नहीं रहोगे अगर उसे कुछ भी पता चल गया तो, इसलिए पहले कह रही हूँ, ये सब छोड़ दो तो तुम बच सकते हो अभी भी। विराज हंसते हुए बोला, मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, किससे बचने के लिए तुम मुझे कह रहे हो? क्योंकि इस बारे में किसी को पता ही नहीं चलेगा, मेरा प्लान इतना फुल प्रूफ है, हा हा हा। अब तुम मेरे पास रहोगी सुनैना, मेरे साथ। सुनैना ने कहा, तुम्हें इलाज की जरूरत है विराज, तुम पागल हो चुके हो, जाने दो मुझे। ये बात सुनकर विराज ने हल्की मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ देखा और एक मास्क निकालकर अपने चेहरे पर लगा लिया। सुनैना को समझ नहीं आया कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। थोड़ी देर बाद कार में अजीब सा धुआं भरने लगा, विराज ने मास्क इसीलिए पहना था। ये बात समझते ही सुनैना ने अपने हाथों से अपना चेहरा, नाक और मुंह ढकने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। थोड़ी देर में वो धुआं उसके शरीर के अंदर चला गया, उसे आंखों में तेज जलन हुई और खांसी आने लगी। वो बेबस होकर विराज की तरफ देख रही थी, खांसते खांसते उसकी सांस उड़ गई, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और उसे सब कुछ धुंधला होता नजर आ रहा था। उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंखों के नीचे अंधेरा छा गया और वो बेसुध होकर कार की पिछली सीट पर गिर गई। कुछ देर बाद धुआं धीरे धीरे गायब हो गया। विराज अपनी तरफ का दरवाजा खोलकर कार से बाहर निकला और फिर पीछे का दरवाजा खोलकर सुनैना को अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर उस घर के अंदर चला गया जिसके सामने कार रुकी थी। लेकिन वो कोई घर नहीं बल्कि खंडहर जैसा एक पुराना बंगला था जहाँ शायद काफी समय से कोई नहीं रहता था। आदित्य अपने सीक्रेट रूम में परेशान बैठा हुआ था। वो गेट की तरफ देख रहा था क्योंकि सुनैना को गए हुए बहुत देर हो चुकी थी। इतनी देर में तो उसके वापस आ जाने की बात हुई थी लेकिन वो अब तक वापस नहीं आई थी। आदित्य ने वहाँ रखा हुआ लैंडलाइन फोन उठाकर अरविंद का नंबर डायल किया और उससे इस बारे में पूछा। अरविंद ने पता किया तो पता चला कि सुनैना को ले जाने वाली कार रास्ते में ही खराब हो गई थी। ये पता चलते ही अरविंद ने तुरंत अक्षत के घर पर कॉल किया और उनसे पूछा। उन्होंने बताया कि सुनैना पहले ही किसी मर्सिडीज कार में बैठकर वहाँ से निकल गई है और उसे निकले हुए 4 घंटे हो चुके हैं। वो इतनी देर पहले वहाँ से निकल गई और पता नहीं किसकी कार में बैठकर। आदित्य की सिक्योरिटी वाली जो कार भेज रहे थे वो तो अक्षत के बंगले तक पहुँची ही नहीं। सुनैना कहाँ चली गई? ये सब जानने के बाद अरविंद बहुत परेशान हो गया और सबसे पहले उसने नदीम से बात की, फिर दोनों तुरंत आदित्य के पास पहुँचे। सुनैना के बिना उन दोनों को वहाँ आते देख आदित्य ने निराशा से चिल्लाया, तुम दोनों अकेले क्यों आए हो? सुनैना कहाँ है? वो अब तक यहाँ वापस क्यों नहीं आई? तुम्हारी जिम्मेदारी थी ना अरविंद? अरविंद ने नजरें झुकाकर कहा, I'm very sorry sir, बट वो एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। आदित्य गुस्से से अपने जबड़े भींचते हुए बोला, प्रॉब्लम छोटी हो या बड़ी मुझे सुनैना को लेकर कोई बहाना नहीं सुनना, इसलिए सीधे बताओ कि क्या हुआ है क्योंकि मेरे अंदर इतना पेशेंस नहीं है कि मैं खड़े होकर तुम्हारी पहेलियाँ सुलझाऊँ। आदित्य को इतने गुस्से में देखकर अरविंद कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया लेकिन नदीम आदित्य के ज्यादा करीब था इसलिए उसने पूरी बात समझाते हुए कहा, सर असल में बात ये है कि हमारी सिक्योरिटी की जो गाड़ी मैडम को लेने जाने वाली थी वो रास्ते में ही खराब हो गई और समय पर नहीं पहुंच पाई, लेकिन पता नहीं और किसकी गाड़ी वहाँ पहुँच गई और मैडम उसके साथ बैठकर वहाँ से निकल गई, पता नहीं कहाँ। आदित्य को ये बात सुनकर और भी गुस्सा आया और वो चिल्लाया, व्हाट डू यू मीन बाय पता नहीं? तुम्हारे साइड से इस तरह के गैर जिम्मेदाराना जवाब की उम्मीद मुझे नहीं थी अरविंद, और सुनैना को लेकर इतनी बड़ी गलती तुम लोग कैसे कर सकते हो, वो भी 4 घंटे? 4 घंटे बाद अब तुम लोगों को ये पता चल रहा है? तुम्हारा सिक्योरिटी सिस्टम बिल्कुल बेकार है। एक काम करो, ये जॉब छोड़ दो, मैं किसी और को रख लूंगा, कम से कम जो सब कुछ करेगा। इस बार अरविंद खुद ही उसकी बात का जवाब देते हुए बोला, अरे सर हम अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग रहे हैं, लेकिन बस थोड़ा सा समय लगेगा, हम मैडम का पता लगा लेंगे और उन्हें सही सलामत यहाँ पर वापस भी लेकर आएंगे।
आदित्य अपना सिर हिलाते हुए बोला, कुछ नहीं होने वाला तुम लोगों से, मुझे खुद ही जाना पड़ेगा अपनी सुनैना को ढूंढने क्योंकि उस विराज का कोई भरोसा नहीं है, क्या पता उसने ही ये सब कुछ प्लान किया हो, और अगर वो नहीं कोई और था तो भी अब तक उसे भी इस बारे में पता चल गया होगा। अरविंद ने उसे बाहर निकलने से मना करते हुए कहा, नहीं सर अगर आप यहाँ से बाहर निकले तो वो लोग आप पर भी हमला कर सकते हैं, ऐसे में परिस्थिति और खराब हो जाएगी, आप प्लीज हमें थोड़ा समय दीजिए, हम सब कुछ ठीक कर देंगे और मैडम का भी पता लगा लेंगे। आदित्य उसकी बात मानने को तैयार नहीं था और जिद करते हुए बोला, नहीं मुझे तुम लोगों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, मैं खुद ही सुनैना को ढूंढ लूंगा, और 2 घंटे तक मैं यहाँ बैठकर क्या करूंगा, हाथ पर हाथ धरकर बैठा रहूं और सोचता रहूं कि वो विराज मेरी सुनैना को कैसे कहाँ ले गया, बस इसीलिए मैं उसे यहाँ से बाहर नहीं जाने दे रहा था, सब मेरी गलती है सब। इतना बोलते हुए आदित्य दोनों हाथों से अपना सिर पकड़कर वहीं रखे हुए सिंगल काउच पर बैठ गया। इस बार नदीम उसे समझाते हुए अरविंद की तरफ से बोला, नहीं सर आपकी कोई भी गलती नहीं है और सुनैना मैम वो भी तो इतने दिनों से यहाँ पर ही थीं, आखिर आप दोनों की अपनी अपनी जिंदगी है, आप दोनों हमेशा ही यहाँ पर छिपकर तो नहीं रह सकते ना, बाहर तो निकलना ही होगा आज नहीं तो कल, और इसके लिए हमें अब उन लोगों से निपटना होगा जो ये सब कर रहे हैं। नदीम ने ही सब कुछ इसलिए कहा क्योंकि उसे अरविंद की पूरी सिक्योरिटी सिस्टम की अच्छी जानकारी थी और उसे पूरा यकीन था कि अरविंद अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके सुनैना का पता लगा लेगा। क्रमशः